एक बार हम सब मिलकर उस रीति से ओम शांति की ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है, साकार ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स यज्ञ के आदि से ही ओम की ध्वनि किया करते थे। अंदर गहरा श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद दूसरा गहरा श्वास लेके उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। इस ओम शांति की ध्वनि के अंदर ही वास्तव में आज के विषय का सारा सार समा जाता है। हम सभी जानते हैं बाबा की जीवन कहानी, हम ब्राह्मणों ने अधिकतर ने पढ़ी दी होगी। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी जिसमें पूरा यज्ञ का इतिहास चित्रित किया गया है और उसके अंदर भी हम सब ने समय प्रति समय पढ़ा है, सुना है कि किस प्रकार बाप दादा ने बच्चों से अंतिम समय छुट्टी लेते हुए इन तीन शब्दों की सौगात सभी ब्राह्मण वत्सों को दी थी, निराकारी और निरहंकारी और निर्विकारी। हम सब ब्राह्मण वत्सों के टिप्स पर बुद्धि के अंदर मुख में ये शब्द तो जैसे सदा समाये हुए हैं ही। ये बहुत अच्छा है कि बुद्धि में सदा ये शब्द रहें, लेकिन उससे भी और अच्छा क्या है कि समय पर ये शब्द सदा याद आते रहें, जीवन में चरितार्थ होते रहें और इसके आधार पर ही जीवन में सदा सफलता मिलती रहे। बहुत इन शब्दों के अंदर बहुत गहरा भाव समाया हुआ है और बाबा के जीवन के अंदर तो कदम कदम पर ही प्रतिपल यह शब्द सार्थक होते प्रतीत होते थे। तीनों शब्दों का वैसे तो जीवन में अपना बहुत गहरा इनका भावार्थ है, लेकिन मोटे तौर पर जो बाबा ने बताया है और जिसको सहज समझ सकते हैं, समझने में और सहज है, निराकार स्थिति किस चीज के साथ संलग्न है? मन वाणी कर्म के साथ, व्यवहार के साथ, किन चीजों के साथ संलग्न है? निराकारी शब्द जो है वो ज्यादातर हमारी मानसिक स्थिति का सूचक है। मन से हमारी स्थिति निराकारी रहे और वाणी में निरअहंकारिता झलकती रहे, क्योंकि किसी भी प्रकार का अक्सर करके जो अहंकार होता है वाणी से झलके मुख्यतः व्यक्ति के व्यवहार में वो ही झलकता है वाणी से। अहंकार का प्रदर्शन, और बाबा ने इसके लिए कौन से शब्द बताए हैं कि किन बातों से अधिकतर अहंकार का प्रदर्शन होता है, किन दो शब्दों से? हाँ, कौन से दो शब्द हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, मैं और मेरा, ये भी है। और मन वाणी और व्यवहार कर्म से क्या सूचक होता है? हाँ? कोई भी कर्म जब होता है, कर्म से पहले कोई बात वाणी में आती है, उससे भी पहले वो मन के अंदर होती है। मन की बात तो फिर भी दिखती नहीं है, पता नहीं चलती है मन के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मन के बाद वाणी में कई बार आती है और उसके बाद वाणी से पता चलती है, और जब कर्म में आ जाती है, व्यवहार में आ जाती है, तो फिर सबको प्रदर्शित हो जाती है, पता चल जाती है। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, तो कोई भी बात जब व्यवहार में आ जाती है तो वो सबके सामने प्रदर्शित हो जाती है। तो इसीलिए निर्विकारी ये बात दी है। और हम सब जानते हैं, बचपन से भारतीय संस्कृति में पढ़ते भी चले आ रहे हैं, सुनते भी, मुख्य मोटे तौर के पांच विकार और उनके छोटे बंधु सखा बाल बच्चे और छोटे आलस्य घृणा ईर्ष्या द्वेष, बहुत सारे विकार वो सब ये और छोटे विकारों की श्रेणियों में आ जाते हैं। तो ये सब तो इतनी बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे हम इस स्थिति को प्राप्त करें जो बाप दादा हम बच्चों से अंत तक इस बात के ऊपर विशेष बाबा ने प्रकाश डाला, विशेष अभ्यास कराया, और विशेष अभ्यास करा करके तब बाबा ने अंत में हम सबसे छुट्टी ली, और छुट्टी लेते समय तक बाबा ने बिल्कुल हम बच्चों को इस बात का स्वरूप बन करके दिखाया, और उसके बाद बाबा ने छुट्टी ली। तो ये जो बात बाबा ने करके दिखाई निराकारी स्थिति, अब कहना तो फिर भी रिलेटिवली बड़ा सहज है, लेकिन पता कैसे चले कि हम निराकारी स्थिति की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं? इस बात को बाबा ने भी जब रियलाइज किया जब ज्ञान में आए, बाबा ने भी बहुत अभ्यास किया इसका, लेकिन बाबा देखते थे, अभ्यास करते करते बाबा को ऐसा लगता था कि मन जो है बार बार भाग जाता है, और जब मन भाग जाता है न चाहते हुए भी, तो बाबा को अपने ऊपर जैसे कि ये होता था कि अभी मुझे और पुरुषार्थ करना है, और करना है। तो ये बात बाबा की बुद्धि में, लक्ष्य में सदा रहती थी। तो जब देखा कि मन बार बार भाग जाता है, तो बाबा ने क्या युक्ति रची, क्या युक्ति रची? बाबा कहता है, अपने लिए खुद युक्ति रचो, युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए बाबा ने क्या युक्ति रची, और जो बाबा ने युक्ति रची और बाबा उसमें बहुत सफल हुए, हम बच्चों के लिए भी वो भी एक तरीके से पूरा बाबा ने रास्ता साफ कर दिया। तो कैसे करी बाबा ने युक्ति? बाबा ने सबसे पहले तो कुछ दिन के बाद मन को पत्र लिखा, पत्र लिखा बाबा ने। क्या पत्र लिखा बाबा ने? बाबा ने मन को पत्र लिखा कि हे मन, गौर से सुनना, हमने कभी ये प्रयास किया है अपने मन को पत्र लिखने का, मन को कंट्रोल करने का? जो बाबा ने करा और तुरंत ही सफलता पा ली, और उसके बाद मन कभी भी बाबा के हाथ से बाहर नहीं गया, मन सदा बाबा के नियंत्रण में रहा। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है। मैं राजा हूं लेकिन तू मंत्री ने मुझ राजा को अपने वश में कर लिया और मुझे अपने पीछे पीछे तू दौड़ाता रहा। तू राजा जैसा हो गया, तू शक्तिशाली हो गया, मैं राजा होते हुए भी आत्मा कमजोर हो गई है, और तेरे कहने पर मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। जब बाबा को ये रियलाइज हुआ कि मैं राजा हूं, आत्मा राजा है, तुम बस, बाबा ने कहा, मन को ऑर्डर दिया कि हे मन, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। मंत्री को राजा के कहने पर चलना होता है, न कि राजा मंत्री के कहने पर चलता है। इस तरह बाबा ने मन को ऑर्डर दिया, और मन को जब ऑर्डर दिया बाबा ने, उसके बाद बाबा ने देखा कि मन जो है धीरे धीरे बिल्कुल बाबा के वश में होने लगा, क्योंकि बाबा अपनी सीट पर जैसे स्थित हो गए। कोई राजा होता है ना, राजा अपनी सीट पर स्थित होके जब ऑर्डर करता है तो सब उसका कहना मानते हैं, और जब राजा ही कमजोर हो जाता है और मंत्री शक्तिशाली हो जाता है, तो मंत्री की बात लोग मानने लगते हैं, राजा की बात नहीं मानते। तो बाबा ने पहले अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर के अपनी सीट पर अपने को सेट किया, और तब मंत्री को ऑर्डर दिया, और तब मंत्री बाबा की बात मानने लगा। और ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी ऑर्डर दिया कि हे बुद्धि, तू भी मंत्री के कहने पर मंत्री के पीछे पीछे भागती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत कमजोर कर दिया, मुझे आत्मा राजा को। लेकिन अब मैं तुम्हें कह देता हूँ कि अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ और तुम मेरे मंत्री और सेनापति हो। अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। तो इसी तरीके से हम भी अपने को अपनी स्वस्थिति में ऐसा स्थित करके, और तब अगर ऑर्डर करते हैं अपने मन को, तो फिर भक्ति मार्ग की तरह हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करें, मन बड़ा चंचल है, मन भाग जाता है, और हम चाहते नहीं मन भागे, लेकिन मन भाग रहा है। लेकिन तब हम मन को पूरा अपने वश में कर लेते हैं। तो ये एक तो अपनी स्वस्थिति में स्थित करने की बात है जो बाबा ने कही, और बाबा ने करके दिखाया, और उसका परिणाम क्या हुआ। कोई भी चीज होती है, रिजल्ट होती है, उसका परिणाम दिखना चाहिए ना। अब परिणाम अगर सफलता पूर्वक होता है, इसका मतलब वो रास्ता हमारा ठीक है, और अगर कोई चीज करने से परिणाम ठीक नहीं निकलता है जितना मिलना चाहिए, इसका मतलब उसमें अभी गुंजाइश है, उस परिणाम में बदलने की जरूरत है। तो बाबा को क्या पता चला, कैसे पता चलता था। हम बच्चे जब भी बाबा के पास जाते थे, बस बाबा ऐसे ही हाथ फैला के, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। हाँ, हमें बहुत सौभाग्य मिला है बाबा के साथ, साकार बाबा के साथ लगभग 6-7 साल रहने का, और जब भी बस जाते थे, आओ बच्चे आओ, बस बाबा की आंखों में इतना प्यार छलकता था, और ऐसे तो चुंबक की तरह एकदम मैग्नेट जैसे खिंच के चला आता था। और उसका परिणाम क्या होता था कि जैसे ही हम आते थे बाबा की बाहों में, तुरंत विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। अभी तो फिर भी अशरीरी होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, देह से न्यारे होने का, शुद्ध संकल्प लाने का, और बस बाबा में उतनी ताकत होती थी। ये है निराकारी स्थिति का प्रतीक, कि जिसकी अपनी अवस्था निराकारी होगी, बिल्कुल अशरीरी होगी, विदेही होगी, वो जिस भी दूसरी आत्मा को दृष्टि देगा, दूसरी आत्मा उसके सानिध्य में आएगी, वो आत्मा भी एकदम विदेही हो जाएगी। तो हम भी इस स्थिति से अपने को चेक कर सकते हैं कि जब भी कोई भी भाई बहन से, किन्हीं से, देवी परिवार वालों से, किन्हीं से भी मिलते हैं, और उनको हम बिल्कुल निराकारी स्थिति से स्थित होके खुद उनको देखते हैं, वो हमारे निकट आते हैं, हमारे ऑरा के अंदर आते हैं। हर व्यक्ति का ऑरा होता है लाइट का, जैसे देवी देवताओं का भी ऑरा दिखाते हैं ना, लाइट का ताज, ऐसे ही हम सभी का ऑरा है। वो भले इन आंखों से नहीं देखने में आता, लेकिन वो ऑरा होता है, और जैसे ही दूसरा व्यक्ति उस ऑरा के संपर्क में आता है, वो हमारे प्रभाव में आ जाता है। हमारी विचार धारा जो भी है, उसको वो एकदम सहज ही स्वीकार कर लेता है, हम उसके इष्ट देव हो जाते हैं, और वो हमें उतनी महान नजरों से देखने लगता है। और वो कब होता है, अगर हम खुद निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, हमारा ऑरा इतना लाइट वाला होगा, पावरफुल, जैसे बाबा मामा को हम देखते थे, दादियों के अभी भी संपर्क में जाते हैं, बस दादियों के पास जाते हैं, मिलते हैं, एकदम कितना शांति शांति, शक्ति स्नेह के वातावरण के अंदर पूरा का पूरा सारा वातावरण चार्ज हो जाता है। और उस वातावरण के अंदर जो भी आता है वो उसी स्थिति का अनुभव करता है। तो ये तो प्रैक्टिकली हमेशा ही एक दो भाई बहन नहीं, हर एक कोई पार्टी की पार्टियां जो आती थी, बस बाबा के मामा के संपर्क में आए, मिले, बैठे और बस। और केवल उतना ही नहीं, इवन साधारण पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति भी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है, परिवार है। तो उस वातावरण में हमें याद है जब गुरुवार को भोग लगता था, आप लोग भी हिस्ट्री हॉल में गए होंगे, हिस्ट्री हॉल में देखा होगा, वहाँ पर संदली पड़ी हुई है, तीन पहले उस समय तीन संदली पड़ी रहती थी, एक संदली बाबा के लिए, एक सबसे किनारे वाली उधर वो मामा के लिए, और बीच वाली संदली खाली रहती थी। उसमें जो भी पार्टी वाले आते थे अपना अनुभव सुनाते थे, और गुरुवार को जब भोग लगता था तो संदेशी भी आती थी, बैठती थी वहाँ, भोग ले जाती थी, बस बाबा की पहले मुरली होती थी, उसके बाद संदेशी आई बैठी और बाबा बस दृष्टि देते थे, हाँ बच्ची गो सुन कम सुन, बस जल्दी से ही जाओ, बाबा कहते थे ये तो खेल पाल है बच्ची जाओ, और बस संदेशी जरा सी बाबा की दृष्टि ली उड़ जाती थी। फिर क्या होता था बड़ा वंडर, क्योंकि भगवान जो है वो तो पशु पक्षी जीव जंतु सबको वश में जैसे होता है ना, प्रकट करता है। तो बाबा संदेशी जाती थी, आती थी, संदेश सुनाती थी, उसके बाद बाबा अपना खोलते थे भोग का डब्बी, और बस भोग की डब्बी से थोड़ा सा जो भी भोग होता था हथेली पर रखते थे, और फिर क्या करते थे बाबा, बाबा हथेली पर रखे, हाँ बच्ची आओ आओ बच्ची, बस किस बच्ची को बुलाते थे बाबा, चिड़िया को, एक बहुत छोटी सी चिड़िया बुलबुल जैसी थी, वैसे कभी नहीं दिखती थी, सप्ताह में छह दिन, और सातवें दिन गुरुवार वाले दिन बस जैसे ही बाबा ने बुलाया बस चू 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 करती हुई इधर उधर से कहीं से आती थी, पहले मेज पर बैठती थी, मेज के बाद आके बाबा की हथेली पर, हथेली पर आके फिर भोग खाती थी, और वो बस वो करके हाँ बच्ची लो। तो जो गायन है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, तो मनुष्य के लिए नहीं महसूस होना चाहिए, पशु पक्षी जीव जंतु वो सबका पिता है, तो इसलिए वो हम लोग देखते थे बस आके ऐसे चू चू करके। और कभी कभी एक हंसी की बात भी होती थी, हिस्ट्री हॉल में एक घड़ी लगी हुई थी, पेंडुलम घड़ी, पुराने जमाने में पहले वैसे घड़ी पेंडुलम हिलता था, और वो घड़ी ऐसी थी कि जब पूरा घंटा होता था 6 बजे 7 बजे 8 बजे तो वो एक खिड़की सी खुलती थी उसमें से, और अंदर से एक चिड़िया मैकेनिकल चिड़िया सी निकलती थी, और कू कू उतनी बार कू कू करती थी जितनी बार वो घंटे होते थे, 7 बजे होते थे तो 7 बजे 8 बजे होते थे तो 8 बजे, और बस आते थे तो ये चिड़िया देखती थी, जो एक्चुअल चिड़िया होती थी, कि अरे ये कौन है दूसरी चिड़िया, तो वहाँ उसे देखती थी तो उसके पास जाती थी, उसको भी कई बार चोच जैसे मारते थे एकदम, ये दूसरी चिड़िया कौन आई। अब बाबा भी चिट चैट करते थे, हंसी देखो बच्चे कलियुगी दुनिया में तो आजकल ना हर आत्मा देखो कैसे एक दूसरे से ना वो होते हैं, और बस उसके बाद जब घंटे पूरे हो जाते थे और वो बंद हो जाता था खिड़की, और वो चिड़िया अंदर, और फिर ये चिड़िया भी अपना भोग लेके चली जाती थी। तो बाबा किस प्रकार से कैसे, मतलब प्यार से बुलाते थे बाबा, और वो आ जाती थी कहीं से और वो करती थी। चलो ये तो चिड़िया की बात रही, ये तो एक ऐसा हार्मलेस क्रिएचर है। एक बार वहां देखा कि भाई जहाँ पर आजकल उधर वो डिस्पेंसरी है उस साइड की तरफ ना, पहले तो ये सब कच्चा था, बाबा के टाइम में भी कोई पक्की जगह नहीं थी, तो एक सांप कहीं से आया तो सब भाई लोग एकदम, बस एक भाई ने सांप के फन के ऊपर अपना डंडा रख करके, और उधर से बाबा के चिन्ह की तरफ से आ रहे थे, तो बाबा बाबा इधर नहीं आओ, इधर ये सांप है। तो बाबा ने कहा, रे बच्चे क्यों, क्या है, भीड़ है, क्यों लगा रखी है, और आए। फिर बाबा के मुंह से तो सबके लिए देखो, जगत पिता था ना, पूरी सृष्टि का पिता, बच्चे को मारो नहीं, क्यों मार रहे हो, क्यों तकलीफ दे रहे हो बच्चे को। तो बाबा, सांप है ये नुकसान पहुंचाएगा, नहीं 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 बच्चे, हांडी लाओ। हाँ, तो मिट्टी की हांडी सी लाए, मंगवाई बाबा ने, और एक भाई को बोला कि लो इसके पकड़ के ना इसको हांडी में रखो और मुंह पे बांध करके छोड़ के आ जाओ। वो थोड़ा भाई जरा हिचकने लगे, थोड़ा सा सांप की बात थी, लेकिन बाबा ने कहा, अरे इसमें क्या बात है, देखो बाबा खुद ही कर देता है, बाबा बड़े आगे। तो सब ने रोक दिया, नहीं 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 बाबा आप नहीं। फिर वही भाई अपना हिम्मत करके उन्होंने पकड़ा, पहले वो सांप इतना ज्यादा वो हो रहा था, उसके बाद सबने देखा कि बाबा ने उसे थोड़ा दृष्टि दी और बिल्कुल शांत मुद्रा में बाबा उसे देखते रहे, वो भी बिल्कुल एकदम शांत हो गया। उसे पूछ पकड़ के उसे हांडी में डाला, ऊपर से बांधा और छोड़ के चले आए। तो देखो जो हिंसक जो भक्ति मार्ग में पढ़ा करते थे द्वापर युग से, कि बड़े बड़े साधु संन्यासी ऋषि मुनि होते थे, बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी दूर आके बैठ जाया करते थे, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था। उन आत्माओं का, ऋषि मुनियों का ऑरा भी है, इसी समय का ही सारा गायन है जो प्रैक्टिकल में देखा करते थे। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा बिल्कुल अपने दृष्टि वृत्ति जरा संकल्प से ही अपनी स्थिति से हर एक को एकदम बिल्कुल शांत कर दिया। तो ये कमाल थी ये निराकारी स्थिति की। अगर अपनी स्थिति हमारी होगी तो दूसरे को कैसे भी को हम तुरंत ही उस स्थिति के अंदर स्थित कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में देखने में आता था, कितने रीति से वहां पर हम लोग देखा करते थे। और इस प्रकार से बाबा के सब बच्चे बाबा के साथ ही साथ जाते थे, बस जंगलों में भी जाते थे सब तरफ, लेकिन कहीं पर भी कोई भी दूर दूर तक भी किसी भी प्रकार के कोई हिंसक प्राणी किसी भी प्रकार का ऐसा वार नहीं किया करते थे। तो ये एक स्थिति होती है, जैसी अपनी स्थिति होती है वैसा वो ऑरा होता है और वैसा ही चारों तरफ वातावरण होता है। और साथ ही साथ क्या देखते थे हम, देखते थे कि बाबा का ना बात का सबने सुना भी होगा। एक बार कई बार वो कलकत्ता में हम लोगों ने बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी, और वहाँ पर कोई हमारे कई प्रकार के लोग होते हैं, कोई किसी ना किसी रीति से ना जिन्हें बाबा हंसी में परम मित्र कह देते हैं, परम स्नेही। तो किसी ने आग लगा दी, वो पंडाल भी जल गया, सारा प्रदर्शनी के चित्र भी जल गए, बहुत नुकसान हुआ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे आगे के लिए सावधानी रखो, इंश्योरेंस कराओ आदि आदि, ये सब पूरी बात ऐसा करो। तो उसका भाव यही होता था, कोई भी व्यक्ति, हमारे यहाँ उस समय तीन बहुत बड़े बड़े वकील आते थे, तो बाई चांस उस समय यहाँ हम आए हुए थे, हम उस समय पढ़ा करते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और यहाँ छुट्टी थी तो यहाँ पर आए हुए थे। तो उन वकीलों ने बोला, संतराम जी, त्रिलोक चंद जी, मोती चंद, ये तीन हमारे बहुत यज्ञ के बड़े कानपुर के वकील हुआ करते थे, तो इन्होंने कहा नहीं बाबा हमें उन पे केस करना, हमारे पास सारे प्रमाण है, फोटो है, पिक्चर्स है, और हम जो है उन्हें हर हालत में ये केस जीतेंगे और हमें इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे देखो, बाप उन्हें क्या मालूम कि उन्होंने क्या नुकसान किया है, बाप जो है कभी भी बच्चों पर केस नहीं कर सकता, बच्चे चाहे जैसे भी हों लेकिन बाप जो है बच्चों का सदा हितकारी होता है। देखो कितनी महान भावना बाबा की ना, इतनी ऊंची भावना, लेकिन उन्होंने सबने बहुत कहा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे आगे के लिए सावधानी रखो, इंश्योरेंस करो, सावधानी रखो, लेकिन कभी भी उनके ऊपर ऐसा केस नहीं करना है। तो सब होते हुए भी बाबा का उनके लिए एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला कि कोई क्रोध का हो, किसी ऐसा हो कि भाई नुकसान इन्होंने किया है, ऐसा कोर्ट केस किया जाए वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। और इसलिए ये बाबा की एक एक चीज से भी कितना निरअहंकारिता, कितना वो वर्षा करता था। देखो बाबा के पास आते थे, पार्टी मिला करते थे, तो पार्टी को टाइम दिया हुआ होता था, लच्छू दादी एक होते थे, टाइम दिया भाई 10 बजे मानो बंबई पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे दिल्ली, 11 बजे कलकत्ता पार्टी, ऐसे अलग अलग पार्टी। तो पार्टियां आते थे है? टीचर पहले अपने टाइम पर आती थी और बाबा मुख्य 3 स्थानों पर मिला करते थे, जैसा पार्टी होती थी, अगर 3-4 लोगों की 2-3 लोगों की पार्टी होती थी बाबा अपने कमरे में। अभी तो फिर भी बाबा का कमरा बहुत बड़ा हो गया, पहले तो उस समय बहुत ही छोटा कमरा था, बस जितने तक पलंग पड़ा हुआ है और आगे संदली, उतना ही कमरा छोटा होता था, ये तो कमरा बाद में बड़ा आगे करा है, तो पहले ये होता था। उससे थोड़ा कुछ ज्यादा होते थे तो हिस्ट वहां पर बाबा की हट में झोपड़ी में मिला करते थे, और अगर 6-7 से भी ज्यादा हुआ करते थे, 10-12, 15-20, तो वो तो बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी, 15-20 की पार्टी, तो वो सब हिस्ट्री हॉल में बाबा के पास मिला करते थे। तो वहां पर जब मिला करते थे कोई भी, तो एक पहले टीचर जाती थी, टीचर जाती थी, देखती थी बस बाबा बैठे हुए हैं अपना शांत में मजे में, और बस बुद्धि में। उसके बाद टीचर जाती थी, बाबा बाबा मैं फलानी पार्टी लेके आई हूँ, तो बाबा एकदम जैसे थोड़ा सा ना जर्क सा लगता था, कोई ध्यान में नहीं होते थे कोई बाबा, लेकिन बिल्कुल इस देह से न्यारे होकर के विदेही स्थिति में कि हाँ हाँ बच्ची बुलाओ का है पार्टी, सबको बुलाते थे, सब आते थे, फिर बाबा से मिलते थे एक एक करके, और उसके बाद बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे एक एक से, एक जाता था दूसरा आता था, लेकिन हर एक कोई विदेही स्थिति का अनुभव करता था, अशरीरी स्थिति का। तो ये एक ब्यूटी थी, बाबा का सानिध्य इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था कि हर एक उस स्थिति का अनुभव करता था। और जब सब चले जाते थे और बाबा 2 पार्टी के बीच में टाइम होता था, मानो 10 बजे के बाद 10:30 टाइम दिया है और 10:20 तक ये पार्टी मिल गई, 5-10 मिनट बचे, तो फिर बस बाबा अपनी मगन स्थिति में, विदेही स्थिति में बाबा स्थित हो जाते थे अपने स्थिति में। तो ये एक ब्यूटी होती थी, एक एक मिनट का बाबा सदुपयोग किया करते थे। हम लोग फिर भी सोचते हैं चलो बट्टी का टाइम है, जब ज्यादा लंबा टाइम होगा तब बैठेंगे, लेकिन बाबा तो एक एक 5 मिनट भी मिलता था उसको सदुपयोग करके उड़ जाते थे। तो ये जो स्थिति थी बाबा की, ये अनुभव सबको ऐसा कराती थी कि खुद थोड़े समय के लिए भी ना हर एक आदमी अपने को मैग्नेटिकली चार्ज अनुभव करता था, थोड़े समय के लिए भी सही, लेकिन अरे मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूं। और इस प्रकार से अरे वन बाई वन पार्टी बाबा फिर मिला करते थे। इसके बाद बाबा जो है ना, ये स्थिति ऐसी जब होती थी वो, और उस स्थिति के बाद हरेक ये अनुभव करता था, बाबा के पास जाते थे, अरे कि ये मैं ये पूछने जाऊंगा, मुझे ये बात पूछनी है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल वो भूल ही जाता था। मुझे याद है कि वैसे तो बाबा से हम कई बार मिले, लेकिन लास्ट में जब 17 जनवरी और 18 जनवरी को मिले, जिस समय हम वैसे आसाम में पोस्टेड थे, और आसाम से शिव सागर से बाबा ने जैसे अपने पास बुला लिया, और वहां पर आके जब बाबा से मिले तो हम कई पूछने, हमेशा की तरह यही थी अब बाबा से आज ये पूछेंगे, ये प्रश्न पुरुषार्थ की बात पूछेंगे ऐसा। लेकिन जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे बड़ा आश्चर्यजनक अनुभव करते थे, वे बाबा के पास बस बाबा ने जरा सा ऐसा दृष्टि दिया, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि बाबा से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा कहते थे मन की बात तुरंत बता देते थे ये पूछने आए हो। तो ये एक बड़ा, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, अनेक बार हुआ, ये स्थिति है जिसे कि शास्त्रों में भी गायन है, मन जीते जगत जीत की स्थिति। जिसने अपना मन जीत लिया होगा उसने जैसे सारे संसार का ही मन जीत लिया, मन जीते जगत जीत की स्थिति। तो ये स्थिति का अनुभव जब हमने खुद अपने आप करा, प्रैक्टिकल बाबा के सम्मुख जाते थे, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब हम बच्चों को भी यही स्थिति बनानी है अंत में, कि हमारे सामने बहुत भक्त आत्मा आएंगी, बहुत इच्छाएं लेकर के आएंगी, बहुत उनकी मनोकामनाएं होंगी, लेकिन हम उनकी मनोकामना तब पूर्ण कर सकेंगे जब उनकी मन की इच्छा को पहले जान सकेंगे। उनकी मन की इच्छा को जान ही नहीं सकेंगे तो इच्छा को पूर्ण कैसे करेंगे। अब बाबा यही चाहते हैं, अगर हमें दूसरे की मन की इच्छाओं को जानने की शक्ति चाहिए तो पहले अपने मन की इच्छाओं पर संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, कोई भी मन के अंदर ऐसी अतिरिक्त इच्छा ना हो, ये हो ये ऐसा होना चाहिए नहीं। बाबा ने कहा है मन के अंदर कोई अतृप्त इच्छा नहीं होगी तो दूसरे की इच्छा को जान करके तुरंत उस इच्छा को पूर्ण कर सकेंगे। एक तो हमने ये अनुभव किया, दूसरा और क्या अनुभव किया हमने लास्ट के दो दिनों में, कि बाबा ने ना जब अंतिम समय होता है तो व्यक्ति को आभास हो जाता है कि बस अब मेरा जैसे कि लगभग अंतिम समय आ गया है और अब मुझे ये शरीर छोड़ना है। तो ब्रह्मा बाबा को भी 18 जनवरी को सुबह ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि बाबा को आभास हो गया था। भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान, तो बस भीष्म पितामह की तरह बाबा उस दिन सुबह क्लास में आए। उस दिन बाबा ने 18 जनवरी की सुबह सिर्फ क्लास योग कराया, मुरली का एक शब्द भी नहीं बोला, पूरा योग कराया, और उसके बाद अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। फिर बाबा ने ईशु दादी को बोला, हाँ जो आज भी बताया ना, ईशु दादी विश्व कल्याणी में रहते हैं, शुरू से यज्ञ का अकाउंट और यज्ञ का सारा कारोबार देखते हैं, तो यीशु दादी को बोला, बच्ची आज जितना भी पत्र लिखवाने हो लिखवा लो, कोई भी ऐसा न रह जाए कि जिसका पत्र अनआंसर्ड रह जाए, यानी कि उसका उत्तर दिए बिना रह जाए। तो बाबा को ये होता था, पहले ईमेल और ये सब तो होते नहीं थे, तो उस समय बाबा ने एक एक पत्र, बाबा सिंधी में पत्र लिखा करते थे लाल लाल अक्षर में, और उन दो लाइनों के बीच में हिंदी में नीले इंक से यीशु दादी जी उसका हिंदी अनुवाद करके लिखा करते थे, जिससे कि हर एक कोई अपने अपने पत्र को समझ सके। तो इस तरीके से बाबा ने एक भी ऐसा पत्र नहीं छोड़ा जिसका कि जवाब देना बाकी हो, क्योंकि अंत में ना कोई भी बच्चा ये ना रह जाए कि अरे बाबा चले गए और मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। तीसरा बाबा ने ना, और नक्की लेक पर जो म्यूजियम है, तो वहां पर वो बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनी लगाई थी, तो कई दिनों से बात चल रही थी लेकिन वो ली नहीं गई थी बिल्डिंग। तो उसी दिन ही बाबा ने क्लियर करा कि हाँ, इस बिल्डिंग को ले लिया जाए और सेवा का नया साधन यहाँ पर बनाया जाए। तो वो तीसरा वो काम अधूरा काम रह गया, क्योंकि ये लौकिक में भी बोलते हैं दुनिया में कि जो अधूरी बात होती है जो, तो वो बार बार नहीं तो व्यक्ति के मन में आती है, ये काम रह गया ये काम रह गया। तो एक दो छोटे मोटे काम जो भी बाबा के बचे हुए थे उस दिन बाबा ने पूरा किया, और लास्ट में अंतिम टाइम की रोज रात्रि क्लास 9 बजे होती है, उस दिन बाबा ने शाम को 7 बजे ही 6:30-7 बजे ही बोला कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, इसीलिए सभी बच्चे भोजन करके क्लास में आए, भोजन करके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी सभी के लिए। तो सभी ने जल्दी जल्दी भोजन 7 बजे तक कर लिया और बाबा भी क्लास में आए, और उस दिन बाबा ने मुरली जो चलाई, तो वैसे बाबा को कई बार खांसी भी आती थी, कई बार तकलीफ होती थी, कफ आता था, लेकिन उस दिन रात्रि क्लास को बाबा ने एक बार भी बाबा को न खांसी आई न कफ आया। वो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा संपूर्ण रीति से कर्मातीत हो जाती है तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर आत्मा का योग बल जो है वो संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, और बस वहीं सामने हम भी बैठे हुए थे क्लास में, हमारे मन में कोई संकल्प आया कि अरे क्या ही अच्छा हो, बस बाबा जो है ना ये कुछ बात बोले हमारे लिए, क्योंकि बाबा के सम्मुख ही हम बैठे हुए थे आए हुए थे। तो बस जैसे कहते हैं भक्त, भक्त के मन में इच्छा होती है और भक्त के इच्छा भगवान तक पहुंचती है और भगवान उस इच्छा को पूर्ण करता है, तो ऐसे ही जैसे ही मन में संकल्प आया बाबा तक एकदम इच्छा वो संकल्प पहुंचा होगा, और तुरंत ही बाबा ने उस मुरली में नाम ले करके एकदम कह दिया जो भी मन की बात थी कि देखो ये बच्चा है, मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, सब बहुत, कभी किसी का निंदा नहीं करेंगे और अंत तक जरूर संपूर्ण बन जाएंगे, ऐसा करके बाबा ने आशीर्वाद भी दे दिया पूरा। तो देखो बाबा तक अंत में जो बाबा ने पार्ट बजाया हम बच्चों के सामने, वही हम सब बच्चों को भी आने वाले भक्तों के सामने पार्ट बजाना है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। इसीलिए हमें अब उस स्थिति को जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया, उस स्थिति को प्राप्त करके हमें भी अंत समय में उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। और उसके बाद क्या हुआ कि बस बाबा सब बच्चों को कह के अच्छा बाबा कमरे से बाहर हिस्ट्री हॉल के बाहर गए और सबको अच्छा बच्चों को याद प्यार गुड नाइट। अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है विदाई लेता है, ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे। छुट्टी लेता है विदाई लेता है ये शब्द बाबा ने कहे और बाबा सबको नैनों से निहारते हुए बहुत मुस्कुराहट के साथ बाबा ने हर बच्चे को एक एक बच्चे को दृष्टि दी। फिर बाबा कमरे में गए, बाबा के साथ दादी जी दादी प्रकाशमणि जी भी गए और बाबा के हाथ में हाथ और बस दादी जी को सब विल करते हुए बाबा ने जैसे छुट्टी ली। लेकिन ब्यूटी ये थी कि बाबा ने 18 जनवरी की रात को शरीर छोड़ा, रात माने 9-10 बजे के करीब 10 बजे के करीब हुआ होगा, लेकिन बाबा का शरीर पूरा 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी बाबा का दोपहर के बाद संस्कार किया गया जब दीदी मनमोहनी जी भी टूर पर गए हुए थे और टूर से वो आए और तब करा गया। लेकिन तब तक बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, न कोई शरीर में दुर्गंध आई, न शरीर कोई काला पड़ा नीला पड़ा कुछ नहीं, और बिल्कुल वही चमकता हुआ शरीर रहा। लगता है जैसे बाबा सो रहे हैं और बस हमेशा की तरह उठेंगे और बस बाबा कहेंगे आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे आओ प्यारे बच्चे, और यही बाबा कह के ऐसा अनुभव होता रहता था। और उसके बाद फिर जब बाबा का संस्कार भी किया गया उसके बाद वहाँ पर बाबा के फिर बाबा ने सारे के सारे राज मुरली में खोले, वो तो आप सबने देखा ही है सुना भी है, हमेशा समय प्रति समय सुनते हैं, और वो ही यही तीन महावाक्य के ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार है, निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी इनके ऊपर, और इस रीति से ये सारा का सारा। लेकिन हमें अंत में प्रकृति जीत भी बनना है, मन जीते तो हुआ, प्रकृति जीत के लिए बाबा ने एक एक बात बताई है कि ये जो भारतवासियों का ना तो अंत में ज्यादातर ये प्रकृति के पांच तत्व ही अति हलचल में आएंगे और इसी में ही सबका बस बहुत परिवर्तन होगा विश्व का। तो उसमें एक एक तत्व का बाबा ने बताया है, अगर हम चाहते हैं जल, जल तत्व बहुत हलचल में आएगा, बाढ़ आएगा सुनामी आएगा, और हम चाहते हैं कि जल तत्व हमारे कहने पर चले, हमारे दुख का अशांति का मृत्यु का कारण न बने, तो हमें जल से अपना संस्कार मिलाना होगा। और जल का सबसे बड़ा संस्कार कौन सा है? जल का संस्कार है एडजस्टमेंट का। गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, चम्मच में लो, चम्मच में, हर चीज में। ऐसे ही हमारा भी संस्कार ऐसे हो, हर आत्मा से हम अपने संस्कार एडजस्ट करके अगर चल सकें तो जल कभी भी हमारे दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकता और हम विजयी होकर के निकलेंगे, जल तत्व से विजयी होकर के निकलेंगे। ऐसे ही दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी में कौन सा गुण है? पृथ्वी का एक सबसे बड़ा गुण है पृथ्वी दाता है। पृथ्वी से ही देखो अन्न मिलता है, जल मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, तेल मिलता है, पेट्रोल, सब चीज पृथ्वी से मिलती है। ऐसे हम भी, बाबा कहता है आप बच्चे भी दाता बनो, हर एक आत्मा को दो, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, उन आत्माओं को जो भी सृष्टि की आत्मा है, शांति प्रेम आनंद सहयोग सद्भावना उन सब आत्माओं को ऐसा चीजें देते रहो, हर आत्मा अनुभूति करे जैसे कि वर्तमान समय दादियों के पास आते हैं, सब आत्माएं भरपूरता का अनुभव करती हैं। बाबा मम्मा के पास आते थे, बिल्कुल भरपूरता का अनुभव करते थे। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी ऐसी चीजें का ये करना है दान कि सब आत्मा भरपूर अनुभव करें, तो क्या होगा, पृथ्वी जितनी भी हलचल में आएगी, भूचाल आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, बहुत विनाश का कारण बनेगी, लेकिन पृथ्वी हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने पृथ्वी के साथ अपने संस्कारों को मिला लिया। तो इसीलिए पृथ्वी के संस्कार मिलाने का वो भावार्थ है, हम पृथ्वी की तरह दाता बने, स्थूल चीजों की बात नहीं बल्कि इन गुण और शक्तियों के दाता बने। ऐसे ही वायु का क्या गुण है, वायु का गुण है हल्केपन का। ऐसे हम भी जीवन में सदा हल्के रहे, कोई कितनी भी बड़ी परीक्षा आए भारी ना हो जाए, मूड ऑफ ना हो जाए। जितने हल्के रहेंगे तो वायु की तरह हल्के अगर रहेंगे तो क्या होगा, जीवन में अगर साइक्लोन आएगा, बहुत तूफान आएंगे, बहुत मृत्यु के कारण बनेंगे, लेकिन वायु जो है हमारी दुख अशांति और मृत्यु का कारण कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वायु की तरह हल्के रहने का अगर गुण हमने सीख लिया तो बस सदा हल्के रहेंगे और जीवन में सदा विजयी होकर के चलते रहे। ऐसे ही आकाश का क्या गुण होता है, आकाश विशाल होता है। तो इसी तरह अगर आकाश की तरह हमने विशालता अपने हृदय में धारण करी, कोई भी आत्मा आए उसका कमी कमजोरी गुण अवगुण हम अपने दिल में रखे ही नहीं, उसकी कमजोरी को स्थान ही ना दें, वो आत्मा चाहे हमारे लिए जितना भी बुरा करे लेकिन हमारे मन में उसके लिए कभी भी बुरे की भावना ना हो, उससे क्या होगा, आकाश की तरह विशालता का गुण धारण कर लिया तो आकाश मार्ग से आने वाले जितने भी विनाश के साधन होंगे, बम हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, बादल फटे, ऊपर से पानी गिरे, कुछ भी हो, लेकिन वो हमारा नुकसान बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आकाश का गुण विशालता का हमने अपने हृदय में धारण कर लिया तो आकाश हमारा मित्र बन गया, और मित्र कभी भी मित्र के प्राण नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। तो एक ये और अंत में गुण है अग्नि, सूर्य में अग्नि की तरह गर्मी प्रकाश होता है। तो इस तरह अगर हमने भी अपने अंदर सूर्य का अग्नि का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, अग्नि में जो भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, कोई भी चीज डालो रूप परिवर्तन। ऐसे ही कोई भी आत्मा आए, बाबा कहते हैं रोती हुई आत्मा आए आपके सम्मुख आए और आपका ज्वालामुखी रूप ऐसा हो कि रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में डुबकी लगाती हुई चली जाए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए। और रूप परिवर्तन तभी हो सकता है जब हमने ज्वालामुखी स्वरूप धारण किया होगा, और ज्वालामुखी रूप अगर हमारा होगा उस किसी भी दुखी आत्मा को हम सुख में परिवर्तित कर सकेंगे। तो इस तरह बाबा कहता है कि प्रकृति को भी वो करो। और अभी तक बाबा ने दादी जानकी जी हमारा, मैं अंत में उनका उदाहरण देके समाप्त करता हूँ। आपको मालूम होगा 2000 का साल था 1999 और दिसंबर का 31 तारीख, और आपको मालूम है 31 तारीख को बाबा आते हैं हमेशा। तो बाबा आए हुए थे यहाँ पर, और उधर दादी जानकी जी लोटस अहमदाबाद में थे, बहुत तबीयत उनकी सीरियस थी, बहुत तबीयत खराब थी, डॉक्टरों ने भी काफी जवाब दे दिया था। तो वहां पर ना, यहाँ पर दादी प्रकाशमणि जी और निर्वैर भाई जी दोनों बाबा को बता रहे थे, बाबा ऐसा दादी की तबीयत तो वहाँ बहुत खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और बहुत ही ज्यादा सीरियस है दादी। तो बस बाबा ने सुना और बाबा ने कहा, एक अक्षर बोला कि नहीं बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है। बाबा ने उनके लिए प्रकृति जीत शब्द यूज किया। ये आज से 20 साल पहले की बात है, 1999 दिसंबर, 31 दिसंबर अभी 2020 चल रहा है। देखो हम सबसे ही ज्यादा कितना दादी रात दिन सेवा में इधर उधर तत्पर रहती है, आज इस देश में, कल दूसरे देश में, और सब तरफ कितना सेवा का काम कर रही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, तो बाबा ने सिर्फ दादी को ही नहीं बोला, बाबा ने हम सब की तरफ इशारा करके बोला है, आप सब बच्चों को भी प्रकृति जीत बनना है। और जितना जितना प्रकृति जीत बनते जाएंगे, मन जीते जगत जीत वो होंगे, प्रकृति जीत होंगे, उतना ऑटोमेटिकली ही जो बाबा ने कहा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये स्थिति को प्राप्त करते चलेंगे और अंत में विजयी रतन बन के बाबा के साथ हम सब वापस घर जाएंगे। ओम शांति।
देगा कौन इतना प्यार आपके लिए।